इस मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव डीप डाइव में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का मिशन बहुत ही खास है। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास है पर हमें दिखती नहीं।
हाँ बिल्कुल, एक इनविजिबल सिस्टम जो हमारी सोसाइटी को चलाता है। अक्सर हम इतने बिजी रहते हैं कि इस बड़े सिस्टम का एहसास ही नहीं होता।
एग्जैक्टली। तो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए अगर स्कूल में कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा?
फिर तो कोई पढ़ाई नहीं होगी, हर कोई अपनी मर्जी से खेलेगा, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा।
सही कहा। या फिर सोचिए रोड पर ट्रैफिक लाइट्स ना हो, कितना भारी कंफ्यूजन होगा, राइट?
ओ, वहां तो और भी बड़ा केओस होगा, सिवियर एक्सीडेंट्स और मैसिव ट्रैफिक जैम्स। तो जैसे स्कूल और रोड्स पर रूल जरूरी हैं, देश को स्मूथली चलाने के लिए भी कुछ बड़े रूल्स होते हैं।
और इन बड़े रूल्स को हम लॉज कहते हैं। इन लॉज को बनाने और सब कुछ ठीक से चलाने के प्रोसेस को गवर्नेंस कहते हैं।
राइट। और जो ग्रुप एक्चुअली ये काम करता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट का मेन एम ही यही है कि सोसाइटी के लिए ठीक डिसीजंस लिए जाएं।
तो यहां पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। रिमेंबर, दिस गवर्नेंस का मतलब है सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना और उन्हें लागू करना, और जो ग्रुप ये करता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं।
बिल्कुल सही। अब इस सिस्टम के अंदर चलते हैं। आजकल हम इंटरनेट से सेकंड्स में मनी ट्रांसफर कर लेते हैं।
हाँ, पहले जो काम पोस्ट ऑफिस से होता था अब स्मार्टफोन से हो जाता है। पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए थ्रेट्स भी आते हैं, जैसे साइबर क्राइम।
एग्जैक्टली। कुछ बुरे लोग इंटरनेट पर साइबर क्राइम करते हैं और दूसरों का पैसा चुरा लेते हैं। जब ऐसा नया प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है?
एक सिंगल ग्रुप अकेले ये सब नहीं संभाल सकता। यहाँ गवर्नमेंट के तीन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एक टीम बनकर काम करते हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर का मेन काम नए लॉज बनाना है। जैसे साइबर क्राइम बढ़ा तो उन्होंने नए सख्त रूल्स बनाए। इसमें लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं।
हाँ, जैसे नेशनल लेवल पर लोकसभा या स्टेट लेवल पर विधानसभा। फिर दूसरा ऑर्गन आता है एग्जीक्यूटिव, जो इन लॉज को लागू करता है यानी एक्शन लेता है।
इसमें हायर ऑफिशियल से लेकर जमीन पर काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट पुलिस। साइबर पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ती है।
पर सिर्फ पकड़ना काफी नहीं है, सजा देना पुलिस का काम नहीं है। यहां तीसरा ऑर्गन आता है जुडिशरी, जो हमारा कोर्ट्स का सिस्टम है।
राइट। अगर किसी ने लॉ तोड़ा है तो जुडिशरी प्रॉपरली एविडेंस चेक करके तय करती है कि उन्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जेल या फाइन।
और इन तीनों के पास अलग अलग पावर होती है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है।
हाँ, ताकि कोई एक ग्रुप अपनी पावर का गलत फायदा ना उठाए। अगर लॉ बनाने वाले ही सजा सुनाने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सब एक दूसरे पर चेक रखते हैं।
सही बात है। तो दोस्तों, रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ लागू करता है और जुडिशरी जस्टिस लेता है।
ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब गवर्नमेंट के तीन अलग अलग लेवल्स की बात करते हैं जो वर्टिकल मॉडल पर काम करता है।
इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर घर का बल्ब खराब हो तो हम सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं जाते, पहले खुद या इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाते हैं।
वैसे ही प्रॉब्लम्स के स्केल के हिसाब से इंडिया में गवर्नमेंट तीन लेवल्स पर काम करती है। सोचिए अगर बारिश से छोटी फ्लड आ जाए तो क्या होगा?
तब लोकल गवर्नमेंट मदद करती है, जैसे गांव या शहर की म्यूनिसिपैलिटी। उनका फोकस लोकल ड्रेनेज और इमीडिएट हेल्प पर होता है।
लेकिन अगर फ्लड थोड़ी बड़ी हो और कई शहर डूब रहे हों तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेस्क्यू टीम भेजती है। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं।
और अगर फ्लड बहुत भयंकर हो तब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट आर्मी और रिलीफ सप्लाईज भेजती है।
इस डिवीजन ऑफ वर्क से एफिशिएंसी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का ध्यान रखती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी,
क्योंकि देश के अलग अलग स्टेट्स की अलग करेंसी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का ध्यान रखती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर।
हर स्टेट की फार्मिंग नीड्स अलग होती हैं, इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और इस पूरे सिस्टम को कुछ मोटोज इंस्पायर करते हैं।
हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्स।
और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जया, मतलब वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। यहाँ धर्म का अर्थ राइटियसनेस और कानून का पालन है।
एकदम परफेक्ट। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले, रिमेंबर दिस, इंडिया में गवर्नमेंट के तीन लेवल्स हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल।
अब एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की बात करते हैं जिन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस में सबसे ऊपर बैठकर देश को एक नया विजन दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
क्या कमाल की पर्सनालिटी थी उनकी। उनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत हम्बल फैमिली में हुआ था।
उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्पेस और डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया
और 2002 से 2007 तक वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। वैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, पर उन्होंने इस ऑफिस से यूथ और एजुकेशन के लिए बहुत काम किया।
हाँ, उन्होंने बच्चों को बड़े सपने देखना सिखाया और कुछ आम इंग्लिश वर्ड्स के नए मीनिंग दिए, जैसे उन्होंने कहा कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए।
उनका फेल का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश।
एक साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने बहुत टेस्ट फेल होते देखे थे। दूसरा वर्ड था ENDED। उन्होंने सिखाया कि एफर्ट नेवर डाइज, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
और तीसरा था NO, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर एक दरवाजा बंद हो तो नया मौका ढूंढो।
कितने सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रिमेम्बर दिस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे कोर सवाल पर, इन लॉज और गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी कहां से मिलती है। ये आती है डेमोक्रेसी से।
ज्यादातर देशों में आज डेमोक्रेसी है। ये ग्रीक वर्ड्स डेमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी पावर से मिलकर बना है, मतलब रूल ऑफ द पीपल।
समझने के लिए वापस एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्लास को पिकनिक पर जाना है और दो जगह हैं ए और बी, तो सब बच्चे हाथ उठाकर वोटिंग करते हैं।
जिसे ज्यादा वोट मिले वहां जाएंगे। इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां हर कोई सीधे वोट करता है, पर बड़े स्केल पर यह पॉसिबल नहीं है।
राइट, अगर प्रिंसिपल से कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो पूरी क्लास नहीं जाती, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी मॉनिटर चुनते हैं। वैसे ही इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है।
हम इलेक्शंस के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। स्टेट लेवल पर इन्हें MLAs यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं,
और नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट में बैठने वालों को MPs यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और इनक्रेडिबल फैक्ट यह है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है।
बिल्कुल, 2024 में लगभग 970 मिलियन वोटर्स थे। इंडिया में 18 साल से ऊपर के सभी सिटीजन्स के पास वोट देने का राइट है।
और जब लोग अपने आसपास के पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में वोट करते हैं तो उसे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डिसीजंस में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं।
तो यहाँ समरी बनती है, रिमेम्बर दिस, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहाँ इलेक्शंस के जरिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं।
इस डीप डाइव में हमने देखा कि सोसाइटी और देश कैसे ठीक से चलता है, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे बैलेंस बनाते हैं,
और हमने सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स के फंक्शन समझे। साथ ही डॉक्टर कलाम के फेलियर से ना डरने वाले लेसन्स को भी रिकॉल किया।
जाते जाते एक थॉट छोड़कर जाते हैं, आज हम MLAs और MPs चुनते हैं क्योंकि हम सब एक साथ लॉज पर चर्चा नहीं कर सकते।
पर सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हर सिटीजन अपने मोबाइल से देश के हर लॉ पर सीधे वोट कर सके तो क्या होगा?
क्या हमें वापस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, जैसे क्लास पिकनिक में किया था, या फिर समझदार रिप्रेजेंटेटिव्स का लॉज पर डिबेट करना ही बेहतर है? इस पर जरूर सोचिए, ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।